आगे तीसरा किस्सा है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का। आयत 61 से 64 में हम हज़रत सालेह की दावत देखेंगे, बाकी अम्बिया की तरह बिल्कुल वही अंदाज। वइला समूदा खाखुम सालेहा या कौमी। अब देखिए, या कौमी, ओ माई पीपल, इससे पता चलता है कि इंसान अपने कल्चर के लोगों में ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है। और फिर वही बात कि अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, और उसने तुमको दुनिया में पैदा किया और तुम्हारे लिए वो सब कुछ उसने रख दिया, तुमको इसमें बसाया, आबाद किया। फस्तग़फिरूहु सुम्म तूबू इलैही, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उस पर तौबा करो, जो गलत काम हो गए तुम्हारा रब करीब भी और कबूल करने वाला। कौम ने बिल्कुल उसी तरह से कठोर अंदाज में जवाब दिया जैसे पिछली कौमों ने दिया था। कहने लगे, या सालेह कद कुंत फीना मरजूवन कबल हाजा, ए सालेह हमें तुझसे तो बड़ी उम्मीदें थी, बिल्कुल जैसे मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीदें थी, सादिक और अमीन कहते थे, तुम तो बड़े अक्लमंद थे, क्या हो गया तुम्हें? आज भी देखिए, जब ज़रा सा कोई बच्चा दीन पे आ जाए और ज़्यादा ही आ जाए तो माँ बाप कहते, तुम्हें क्या हो गया है, किसकी बातों में आ गए हो, ये क्या हुलिया बना लिया है, कौन देगा तुम्हें लड़की? और खुदा ना खास्ता आपके मियाँ साहब ज़रा से ज़्यादा दीनदार हो जाए, आप कहेंगे मैंने इनसे तो शादी नहीं की थी, वो तो बड़ा हैंडसम शख्स था कोई, आप तो ऐसे बन गए, आपका तो हुलिया बिगड़ गया। तो दीन पे अमल करने के बाद लोगों को अमूमन वो लोग ज़रा से ज़्यादा बढ़े हुए लगते हैं। हज़रत साले ने कोई बहस मुबासा नहीं किया, कहा देखो ना, मैं तो अल्लाह की तरफ से खैर पे ही हूँ। और कहने लगे, अच्छा मैं निशानी दिखाओ, ये कातिबा नाम की एक चट्टान है, ये फटे रॉक थी एक, और इसमें से एक ऊँटनी निकले घाबन प्रेगनेंट, और हमारे सामने उसका बच्चा भी हो, बस फिर हम आपको नबी मान जाएंगे। भाई नबी ने कभी ऐसा दावा किया कि मैं कोई जादूगर हूँ या ऐसा हूँ? लेकिन ऐसे साले अम्बिया कराम के दिल की तरह उनका भी दिल बहुत नरम था। कहा अल्लाह ताला आपके लिए क्या फ़र्क है, माँ के पेट से भी तो बच्चा आप ही निकालते हैं, तो आप उन पहाड़ी से निकाल दें, हकीकत में फिर ऐसा होगा, हमारा ईमान है मौजज़ों पर। अल्लाह ने एक ऊँटनी बुलवाई, पहाड़ी में से वो निकली, वो इतनी मोटी ताज़ी थी, अपने वज़न से हिलजुल रही थी, और जब वो आई फिर उसने एक बच्चा भी दिया। कुछ दिन तो बड़े मरूब हुए। अब वो ऊँटनी थी, ज़ाहिर उसने खाना था, वो जाती तो पूरी पूरी खेतियाँ खा जाती, इनके जानवरों के लिए फसल ना बचती, पीने के लिए किसी कुएं पे जाती तो सारा पानी पीती, तो क्या हुआ कि जो खुद मांगा उसी के तकाजे पूरे ना कर सके। इसमें अमल का नुक्ता लिख लें, कभी कभी हम बड़ी दुआ करते हैं, अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले, अल्लाह हमसे कोई खैर का काम ले ले, अल्लाह कोई दुनिया में रहती दुनिया तक कोई सदका जारिया वाला काम ले, अल्लाह मौका ले आता है तो अब जाहिर है कि उस काम के कोई तकाजे होंगे, मेहनत होगी, दौड़ धूप होगी, माल लगेगा, वक्त लगेगा, उस पर लोग पीछे हो जाते हैं। तो दुआ कीजिए इसमें अपने लिए कि अल्लाह हमें ऐसा कभी ना करे। फिर कौम समूद पे अज़ाब आता है 65 से 68 में, फ़ाकरूह फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम, उन्होंने उसी ऊँटनी की कुंछें काट दी, कहने के ना जी ना, इसके आने से तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अपसेट हो गई और हम तो अच्छे भले थे, और ये क्या हो गया? 3 दिन तक अल्लाह ने उनको पकड़े रखा, और फिर एक ऐसा सख्त अजाब आए इस कौम पे, 3 मुख्तलिफ अजाब आए थे, जलजला भी आया, सैखा का भी था, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने इनको खूब झंझोड़ा, और इस कौम को भी दुनिया में कैसे ख़त्म किया, कलम यगनौफी हा, गोया कि वो बसते भी ना थे इसमें। लिहाजा एक और कौम सफ़ाए हस्ती से पाक हुई। यहाँ तक आप देखिए, ये जितने भी किस्से पढ़े हैं ना, इनको कहते हैं प्री अब्राहमिक नेशंस, हज़रत इब्राहिम से पहले की कौम है, यानी बाद में भी आप लिखना चाहें, क्योंकि अब इसके बाद इब्राहिम का किस्सा, तो 3 पहले की कौमें और 3 बाद की। बस ये कुरान का एक असलूब याद रखिएगा, अमूमन इन्हीं कौमों का तस्करा। तो हज़रत इब्राहिम के लिए बेटे और पोते की बिशारत है, आयत 69 से 73 में, वलकज्जात रसूलुना इब्राहिम बिलबुशरा, और बेशक हमारे भेजे हुए मुराद फरिश्ते हैं इब्राहिम के पास खुशखबरी के साथ पहुँचे। उन्होंने कहा सलामन, काला सलामन, क्या पता चला फरिश्ते भी सलाम करते हैं, अब हमें भी सलाम करना है। अमूमन अब सलाम का रिवाज भी कम हो रहा है, ना चेहरे पर स्माइल, ना कोई बात, ना चीत। पीछे आप पढ़ कर आए हैं सूरह निसा में कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम उसको अच्छा जवाब दो, स्माइल तो दो। आज चेहरे पे स्माइल भी नहीं होती, आंखों पे आंखें भी नहीं डालते, कुछ चेहरे पे नरमी। आपको तो सलाम का लफ्ज़ एक मोड़ है कि तुम मुझसे सलामत रहो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बातें नहीं करूँगा। और सलामती एक इंसान को देख कर इंसान खुशी महसूस करता है, तो हमेशा अपने घरों में सलाम का माहौल बनाएं, घरों के झगड़े लड़ाइयाँ मसले ख़त्म हो जाएंगे, मासियों के साथ तकरार ख़त्म हो, जब जिसको मिले अस्सलामुअलैकुम। सुबह उठे जो बंदा मिला अस्सलाम वालेकुम, घर में दाखिल हुए अस्सलाम वालेकुम, फिर इसी तरह से सहाबा के तो बीच में एक दरख्त आ जाता और वो उसके बाद दोबारा मिलते तो भी सलाम करते, तो सलाम को रिवाज दीजिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, जब उन्होंने देखा फरिश्ते आए हैं खुशखबरियाँ दे रहे हैं, अब इनको फिक्र लगी इनको कुछ खिलाना है, तो अल्लाह ताला कहते हैं फमाल अभी सा अंजा बीजलिन हनीस, ज़रा सी भी देर नहीं की कि ज़रा पूछें अच्छा क्या खाएंगे, अच्छा कुछ पियेंगे आप, अच्छा ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, अच्छा ठंडा तो आप पीते नहीं, गर्म का मौसम नहीं, खाने का वक्त नहीं, अच्छा जी फिर आराम से बैठे, ये गलत बात है। याद रखिए हमारे दीन और ख़ास तौर पे इवन मक्का वाले जिनको अल्लाह ने चुना था ना अपने नबी के लिए, उसकी बहुत बड़ी चीज़ मेहमान नवाजी थी। मेहमान रहमत होता, मेहमान को खुशी से दिखाना खिलाना पिलाना, उलमाए किराम ने इसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी हैं। चंद आदाब नोट कर लेते हैं मेहमान नवाजी के। पहली बात है कि मेहमान नवाजी ईमान का हिस्सा है, जितना आपके अंदर ईमान ज़्यादा होगा आप उतने मेहमान नवाज होंगे। फिर ये मेहमान का इंसान पर हक है, हर इंसान के मुख्तलिफ तौर पर एक दूसरे पर जो हकूक़ हैं ये उसमें से आता है। फिर इसी तरह जो ज़ियाफ़त नहीं करता उसमें खैर नहीं है, यानी तंग दिली तुर्शवी। अब आप कहते पिज़्ज़ा आ गया छुपा दो मेहमान आ गए, अब पिज़्ज़ा को छुपता है? वो तो अंदर छुपाया ओवन में होगा तो मेहमान को पता लग जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि आपने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगाया। आप बच्चे को कहते नहीं नहीं इनको चाय बटर खा देते हैं, अच्छा इनको शरबत बना दो और वो जो हमने अपने लिए कोई चीज़ मंगवाई है उसको बाद में खाएंगे, गलत बात है। खुले दिल के साथ कीजिए और यकीन कीजिए कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिनके दिल खुले होते हैं उनके हाथ में कभी कमी नहीं हुई, वो दो दो हाथ से खिलाते हैं पिलाते हैं और कभी आज तक उनका ख़त्म नहीं हुआ। फिर इसी तरह से एक और अदब नोट कीजिए कि मेहमान नवाजी इस्तेदात के मुताबिक कीजिए, अल्लाह ने आपको जो दिया है उसकी बेहतरीन चीज़ अगले को पेश कर दें, और मेहमान नवाजी हक है, इसको वसूल करने पर कोई गुनाह नहीं। यानी अगर कोई अपने मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करता और वो उसे मांग लेता है वो चीज़, तो गुनाह नहीं है। और ये भी नहीं कि अब मेहमान नवाजी कोई महीनों पे होती है, आम तौर पे 3 दिन मेहमान नवाजी के, उसके बाद उसको घर का फ़र्ज समझा जाएगा। फिर इस तरह मेहमान नवाजी करते हुए तकल्लुफ़ की ममानियत है। आज हमारे यहाँ किसी को बुलाते ही नहीं, क्यों, कौन पकाए, क्या पकाना है, आपने 8-10 चीज़ें गिननी है, कचरी के कीमे से ले के आपने नहारी कोरमा और बिरयानी भी ज़रूर बनानी है, क्या ज़रूरत है। आप प्यार से मोहब्बत से कोई वन डिश रखिए, कोई एक तहजीब के से रखिए, आप हर हफ्ते किसी को बुलाएं। पहले दौर में मेहमान के आने पे लोग खुश होते थे, आज फी ज़माना लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने परेशान हैं कि मेहमान का आना उनको बहुत चुभता है। इवन सगे बच्चे बहन भाई कहाँ मिलते हैं, कौन आता है। तो हमेशा कुरान पढ़ने के बाद अपने दिल को खुद चेक करें इंसान कि मेरे दिल में मेहमानों के आने पे घुटन होती है या खुशी होती है। फिर इसके बाद आगे देखें तो आयत 47 से 76 में टॉपिक है सरकश कौम के लिए नबी की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाती, यानी जिन कौमों ने अपने अम्बिया को सताया उनके साथ क्या हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही किस्सा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल से वो जो रोब था वो चला गया और फरिश्तों के आने पे जो खैबत हुई और उनको खिलाने पिलाने की फ़िक्र हुई, तो कुछ बातें ऐसी हुई कि जो कौमें लूत की तरफ जाने से मुतल्लिक थी। कौमें लूत कौन थी, उसके किस्से को अगर हम देखें तो आयत 77 से 83 में आता है, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि हज़रत लूत हज़रत इब्राहिम के हम असर थे, को टाइम इरा था इनका और ये आपस में चचा भतीजा का रिश्ता भी आता है। इनकी कौम में होमोसेक्सुअलिटी थी। आज के दौर में सिर्फ कुरान के वो पोर्शंस जिसमें कौम लूत का किस्सा है, कुरान के तर्जमे और उसी के अल्फाज की रोशनी में हल्के फुल्के अंदाज से जवान होते बच्चों को कहानियों की तरह सुना दें ताकि उनके दिल में इस बुरे काम की गंदगी हो, क्योंकि अब ये जो आने वाला दौर है शुरू हो चुका है अब तो, यानी बिल्कुल इट्स वेरी मच स्टार्टेड, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने इस एजेंडे को शुरू कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में वो हदीसें जो आप क़यामत के कुर्ब की पढ़ते थे वो सच होने वाली हैं कि लोग सड़कों के किनारे जिना करेंगे, बदकारी करेंगे। और आप देखिए कि गुनाह की कोई हद नहीं होती, तो इस पूरे किस्से को आप तफसील से पढ़िए सुनिए और आज के दौर में इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर लेक्चर्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद आयत 84 से 95 में नाप तोल की कमी से बचना है, यहाँ कौम शुएब, पीछे भी हमने बात की थी सूरत अलराफ में 8th पारे का एंड और 9th का शुरू, इस कौम के अंदर बुखल था, डंडी मारते थे, अल्लाह ने इनको बहुत वसत दी थी लेकिन इन्होंने इस सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ कमी करने की बात की। हज़रत शुएब ने इनके ऊपर तनकीद की और इंसान सबसे ज़्यादा माइंड करता है जब उसको ऐसी बात कही जाए जिसका असर उसके माल पे पड़े। तो ये पूरा किस्सा आपको मुझे क्या बताता है कि नाप तोल की कमी से बचना है। और ये सिर्फ चीज़ों के तोलने में नहीं होता, रिश्तों का हक देना कि ना देना, इंसानी मामलात पूरे करने के ना करने, प्लस इसमें हकूक मामलात एक दूसरे के साथ, जो जिम्मेदारियाँ आपकी उनको पूरा की है या नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दूसरों को नहीं पता चलती, अल्लाह को चलती हैं। और आप देखें कि इस पे बुरी सूरत है मुतफ़फ़ीन के नाम पे, वैलुल लिल मुतफ़फ़ीन। तो छोटी छोटी हक तलफियाँ, वो मासियों की हों, वो बच्चों की हों, वो माँ बाप की हों, भाई बहनों की हों, इस पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कल क़यामत के दिन कहीं ये हमारी नेकियाँ लेने ना आ जाए। फिर इसके बाद अब आगे फिरौन और मूसा का किस्सा शुरू होगा, जिसमें आयत 96 से 101 में टॉपिक क्या है, हर लीडर की सिम्मत दुरुस्त नहीं होती। डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट, ये स्टिकर मैंने किसी गाड़ी के पीछे देखा था कुछ साल पहले। हम दिन रात दुआ करते हैं, दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीन अनमता अलैहिम गैर अल मकदूबी अलैहिम वलद्दालिन। लेकिन आज अमली तौर पे आप देखिए हम किन को फॉलो करते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं है। हम बाहर की दुनिया से आया हुआ हर नज़रिया हर ख्याल कबूल कर लेते हैं, या अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और फिरौन के किस्से को साबित करके कहा कि फिरौन कोई अच्छा लीडर नहीं था। उसने तो वो कहावत कायम कर दी, या शायद उस पर यह फिट हो गई कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 102 में अल्लाह की पकड़ की बात है, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ वही ज़ालिमत इन अख़ज़हु अलीमुन शदीद, कि तेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है। याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला बहुत सब्र वाला है, अस्सबूर उसका नाम है। लेकिन जब फिर वो पकड़ता है ना तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। फिर आयत नंबर 103 से 109 में टॉपिक है, जहन्नुम से पनाह मांगनी है और जन्नत की दुआ करनी है। यानी अंबिया कराम के किस्सों के बाद अब ऐसे खूबसूरत टॉपिक जिसका ताल्लुक आखरत से है, इन नफीजा लिकल आया, बेशक इसमें निशानी है उसके लिए जो डरता है आखरत के अजाब से, और ये दिन है लोगों के जमा होने का और गवाहियों के कायम होने का। और इसमें फिर आगे आप देख रहे हैं कि कुछ जहन्नुम की बातें हैं, जहन्नुम का चिल्लाना है, फमल्लज़ीन शकूफ़ फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन वशहीक, जैसे गधे की आवाज़ होती है ना ढींचू ढींचू की, जहन्नुम में से ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी, उस दिन इंसान कलाम ना कर सकेगा। और इसी तरह इसके ऑपोजिट जो लोग अच्छे काम करेंगे, व फिन जन्नति खालिदीन फीहा। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमारे कल्चर में जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है अभी तक, और अल्लाह करे कि आगे हमारी नस्लों में भी रहे। टूटते बैठते दुआ किया करें, और सुबह शाम की दुआओं में है ना, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार 7 दफ़ा, अल्लाह में आग से बचा। अब वो किसी रिवायत पे है कि नहीं, आप वैसी उठते बैठते मांग लीजिए। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नत अल-फिरदौस, जो जन्नत मांगता है जन्नत कहती है अल्लाह इसको दे देना, और जो जहन्नुम से पनाह मांगता है वो जहन्नुम भी कहती है अल्लाह इसको मेरे पास न लाना, ये तो सुबह शाम मेरे से पनाह मांगता है। फिर आयत नंबर 110-111 में आप अम्बिया के किस्सों के अंदर ही हज़रत मूसा के किस्से से एक सबक है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला के कलाम से हर दौर में इख्तलाफ किया गया। वलक़द आतैना मूसा अल-किताब फ़ख़्तलिफ़ फ़ीही, आप आज के दौर में लोगों को देखते हैं ना कुरान से मुख्तलिफ बातें करते, इस पर तनकीद करते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं, ये पहले भी था अब भी है, आप और मैं क्या करें। आपको यकीन है ये सच्चा कलाम है, तो मोहब्बत से इसको सीखते भी जाएँ और दूसरों तक पहुँचाते भी जाएँ। फिर इसके बाद अगली आयत 112 से 113, यहाँ वो आयात हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया। एक मौके पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी के सर में चंद सफ़ेद बाल देखे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो आपने जो जुमले बोले थे उसमें क्या कहा था कि हाँ मुझे खुद व अख़वातुहा, और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। यानी इस सूरत का नाम आपने लिया, कुछ सूरतें तीसवें पारे की थी, इंशिकाक और इन्फितार वगैरह, तो उलमा कहते हैं कि वो ये आयत थी। 113 आप भी ज़रा इसकी शिद्दत को महसूस कीजिएगा। फस्तकीम कमा उमिरता, बस आप सीधे रहे, इस्तकामत के साथ खड़े रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो भी लोग जो आपके साथ तौबा कर लेते हैं, और सरकशी ना कीजिए, बेशक वो उसको जो तुम अमल करते हो देखने वाला है, और आपका झुकाव नहीं होना चाहिए उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया, वरना आपको भी छू जाएगी आग, और आपके लिए फिर अल्लाह से छोड़कर कोई दोस्त या मददगार नहीं होगा। चूंकि पिछली कौमों के किस्से बहुत आए, सूरत में अल्लाह के नबी को अपनी कौम का फिक्र लग गया कि अच्छा, अगर नूह से लेकर कौम सवाले तक डूबी गई, डुबो दी गई या किसी और पकड़ में आई, तो कहीं कुरैश पे भी पकड़ना है। इस बात ने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया। फिर उसके बाद नमाजों के औकात इशारतन मिलते हैं आयत 114 से 115 में, वाकिमिस सलात तरफ़ैन नहार। आप देखिए कि नमाज इतनी अहम इबादत है, लेकिन एग्जैक्टली फजर जोहर के नाम भी नहीं है। पूरे कुरान में आपको पांच नमाजों के नाम, ये फ़राइज़ हैं, ये सुन्नतें हैं, ये तरीका नहीं मिलता। वजह वो जुमला याद कीजिए जो शुरू में दिया था, दोबारा बोल देती हूँ। हर जुबान की कोई डिक्शनरी होती है, कुरान की डिक्शनरी सुन्नत है। अगर सब कुछ कुरान में होता तो फिर तो हदीस को लोग समझते ही ना, तो क्या पता चला कि कुरान में तस्करा है, तरीका कार आम चीज़ों का हदीस में है, लेकिन यहाँ इशारे बहरहाल मौजूद हैं। फिर आयत नंबर 116 से 119 में, बुराई से रोकने वाले ही अजाब से बचते हैं, ये टॉपिक है। असल में देखिए ना, कौमों पे जो अजाब आए वो उनके गुनाहों की वजह से आए ना, तो यहाँ फलौला कान मिनल कुरून से लेकर वन नास अजमाइन तक पैगाम क्या है, हर दौर में, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का दौर था, कौम हूद थी, या सवाले थी, या शुएब की कौम थी, जो लोग उस दौर में बुराई से रोकते रहे अल्लाह ने उनको बचा दिया। टूटी हुई कश्ती बच गई और पहाड़ पे चढ़ा हुआ काफिर बेटा डूब गया, आज भी वही बचेंगे। तो अपने लिए नियत कीजिए कि मेरी बाकी ज़िंदगी लोगों को बुराई से रोकने में और अच्छाई की बात बताने में सरफ हो, और अपने बच्चों को शुरू से इस काम की और इस दावत की मोहब्बत दिलाएं। देखिए जो इतनी आज हमें तकलीफ़ें हैं ना, हमारी बेचैनी है, हमारे परेशानी है, हमें बच्चों के गम है, कभी भाई बहनों के सदमे हैं, कई माली परेशानी है, इसमें एक रीज़न पूरे यकीन से कह सकती हूँ जो कुरान सुन्नत से समझ आया, उम्मत मुस्लिमा क्यों परेशान है, उम्मत मुस्लिमा के बच्चे क्यों बदतमीज़ हैं, उम्मत मुस्लिमा के शौहर क्यों इतने बदजुबान हैं, दावत नहीं देते हम। ये इतना खूबसूरत काम है कि इसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत हो जाती है। हम ये काम जितना करते जाएंगे, हमारे घर वाले उतने हमारे मुआविन हो जाएंगे, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा, और फिर ये सिनेरियो बढ़ता ही जाता है।